आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। सो बेसिकली इस चैप्टर से हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी डेट्स थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी हिस्ट्री में, और डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या क्या इवेंट्स होते थे, किस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो है वो बॉर्न अप हुई है, ग्रोन अप हुई है, और किस तरीके से ये डेवलप हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? They are trying to say कि बहुत सारे historians ऐसे रहे हैं जो कि dates को लेकर बहुत ज़्यादा fascinated रहते थे, बहुत ज़्यादा excited रहते थे। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के बीच में debate हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि किस time पर कौन से ruler को कौन सी date में उसे क्राउन दिया गया था या कौन सी डेट पे बैटल किए गए थे। तो ये एक बैटल और जो क्राउन वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो पूरा डिस्कशन है, ये डिबेट्स में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल सेंस में देखें तो हिस्ट्री को हम डेट्स से बहुत अच्छे से उसको कंपेयर कर सकते हैं। दैट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स, मतलब हिस्ट्री का मतलब ही होता है दूसरा उसका पहलू ही होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो दूसरा उसका पहलू ही होता है कि डेट्स। काफ़ी बार आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री हमें बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती है। आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते हैं। तो क्या ये कंसेप्शन सच है या नहीं है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। It is about finding out new things where in the past, and we compare the past with the present, we refer to time, we walk of before and after. तो हिस्ट्री जो है वो चेंजेस के बारे में है जो हमारे लाइफ में होता आया है, हमारे सोसाइटी में होता आया है ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो चेंज होता आया है हिस्ट्री उसके बारे में है। हम कोई भी नई चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने के चक्कर में और उसके पीछे जाते हैं और रिसर्च करते हैं सो दैट वो चीज़ और ज़्यादा डेवलप हो जाए। फॉर एग्जांपल, अर्लियर जब ट्रेन्स वगैरह लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पर स्टीम इंजन्स थे, इलेक्ट्रिक इंजन्स नहीं थे, पेट्रोल के इंजन्स नहीं थे, फ्यूल के तौर पर कोल यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ट्रेन्स आ गई हैं, इंजन वाली। तो हम हिस्ट्री में पहले और आज के बाद में कंपैरिजन करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द मोमेंट्स ऑफ वंडर। इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। तो हम आज जब जी रहे हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो हमारे पास हैं, कि इनका इन्वेंशन कब हुआ होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और कई बार हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जिस वर्ल्ड में अभी रह रहे हैं वो एक हिस्ट्री से ही जन्मा हुआ है, क्योंकि जब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होते हुए, कुछ नए नए चेंजेस नहीं हुए, तो तब वो वर्ल्ड नहीं बना, उससे पहले वो कुछ और था। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people go to hear about things before newspapers began to be प्रिंटेड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके दिमाग में, अगर आप हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जानना चाहते हो या आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो आप हर छोटी छोटी चीज़ में हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने किसी को रोड साइड कोई चाय का टपरा है वहाँ पर चाय पीते हुए देखा, तो आप ये सोच सकते हो कि वो चाय और कॉफ़ी का इन्वेंशन कब हुआ होगा, कब लोगों ने ये पीना शुरू किया होगा। उसके बाद जब लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि जब रेलवेज नहीं थे उससे पहले लोग इतनी लंबी यात्रा कैसे तय करते थे और रेलवेज कब इन्वेंट हुए होंगे। उसके बाद थर्ड एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर का दिया है, कि अभी तो हमारे पास न्यूज़पेपर होती हैं सारी खबरें पहचानने के लिए, बट अर्लियर डेज में जब न्यूज़पेपर नहीं होता था तो लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। नाउ कम टू फिगर वन ऑन द राइट हैंड साइड, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्रास टू ब्रिटेनिया, फ्रंटिपीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782। तो यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें जो ब्राह्मण्स हैं हिंदू धर्म के होते हैं, जो वो ब्रिटिश की जो गॉडेस हैं उनको एक पीस ऑफ पेपर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से मैप बनाया हुआ है इंडिया का। और ये सिर्फ ये नहीं दर्शा रहा है कि वो पीस ऑफ मैप दे रहे हैं या कुछ पेपर दे रहे हैं, ये चीज़ इस बारे में दर्शा रही है कि जो हमारे यहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अभी तक चलता है, जो पुलिस का जो सिस्टम है, जो रैंकिंग सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो ये पिक्चर आपको ये डिपिक्ट कर रही है कि हम जो अपनी पावर है, जो अपना अधिकार है, वो ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। नाउ कम टू दिस एक्टिविटी बिलो, लुक केयरफुली एट फिगर वन एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एन इम्पीरियल परसेप्शन। तो ये आपको देख के उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। कम टू नेक्स्ट पेज, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। इतने सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं वो हमको पुराने समय की याद दिलाते हैं कि पुराने समय में जब ये डेवलपमेंट हुए तभी आज जाकर हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टर्म में या किसी ईयर या मंथ में आपको वहाँ पर बताया जाए उसमें टाइम। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, they developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and the society. तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज़ का एक फिक्स डेट आपको बता दें। कई बार कुछ चेंजेस हैं जो ओवर टाइम होते हुए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टी का हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे थे कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा, तो इट माइट पॉसिबल ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक प्रॉपर दिन उन्होंने बना लिया, चलो आज से हम चाय पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, उन्होंने वो टेस्ट अपना डेवलप किया होगा, उनको अच्छा लगा तो दे टुक इट एज अ हैबिट और उन्होंने फिर चाय पीना शुरू कर दिया। उसी तरीके से हम इस चीज़ की भी फिक्स डेट नहीं बता सकते कि जो ब्रिटिश रूल है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था इंडिया में, क्योंकि वो धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश हुआ था, कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं थी। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट थे वो कब स्टैब्लिश हुए थे, तो वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। एंड फाइनली अब आप सोचेंगे कि हमारी जो आज़ादी मिली थी उसको 1947 का क्यों बताते हैं। इसलिए बताते हैं क्योंकि उस दिन एक्चुअल में हमारा देश आज़ाद हुआ था और कोशिश तो बहुत पहले से चल रही थी, 18 सेंचुरी के टाइम से चल रही थी, बट नहीं हो पाए थे हम आज़ाद। फाइनली हम 1947 में हुए थे, इसलिए उसको एक डेट के तौर पर बताया गया है। हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, जो इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, वो कोई एक डेटेड चेंज नहीं होता है, वो एक ओवर टाइम का चेंज होता है जिसे हम एक पर्टिकुलर डेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। तो हम इन सारी चीज़ों को एक डेट के तौर पर नहीं नाप सकते, वो एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के बीच की बात होती है और हम एक स्पैन ऑफ टाइम ले सकते हैं कि इतने सालों के टाइम के बीच में ये चेंजेस आए, हम वो चीज़ ले सकते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। अब आप ये सोच रहे होंगे जब डेट के बाद कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम डेट नहीं बता सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम हिस्ट्री से इतने ज़्यादा एसोसिएट क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी एक रीज़न है। There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. तो एक time था ऐसा जब history को बड़े बड़े जो battles होते थे, बड़े बड़े जो events होते थे, उसके हिसाब से account किया जाता था। और इसमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में बताया जाता था कि उनने कब कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सी डेट से युद्ध शुरू हुआ था, कब तक चला, इवन ये भी बताते हैं पूरा टाइम पीरियड। उसके बाद कब उनको राजा बनाया गया, कब वो प्रिंस थे, कब उनको राजा बना दिया गया, उसके बाद कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब वो मरे और दूसरा जो किंग था उसने वो थ्रोन को सक्सीड किया। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं, वो इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री को हम डेट से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इसको हम एक्चुअल डेट के हिसाब से बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर इवन सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक डेट्स आप बता सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेट के हिसाब से ही ये इवेंट्स होते हैं। और इन डेट्स को लेकर डिबेट्स होना तो बहुत ही आम बात है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट और अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चन। द लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, वॉट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज्ड। तो आपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, अपने 2 साल में जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि हिस्टोरियंस ने होस्ट इश्यूज के बारे में लिखा था और उसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे थे, यानी कि जो मेन इश्यूज होते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा कि वो कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, यानी कि अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, अपना खाना पीना रहन सहन कैसे मेंटेन करते हैं, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, किस फसल को प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो खाते हैं, और किस तरीके से सिटीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई, मार्केट्स डेवलप हुए, लोगों के अंदर ये मेंटालिटी आई कि अब हमें सिविलाइज्ड वे में कैसे रहना है, नए नए आइडिया स्प्रेड हुए, नए कल्चर्स स्प्रेड हुए और एक नई सोसाइटी फॉर्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो कि हिस्टोरियंस ने लिखी थी हिस्ट्री में। कम टू फिगर 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। ऑल एडवर्टीजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज। दिस 1922 एडवर्टीजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, वाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन अ हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस अर्थुर, हु वॉज गिवन द लिटिल ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो ये जो लिप्टन टी, जो आपने अभी भी एड देखा होगा, कोई सी एक्ट्रेस है, कौन करती है इसका एड? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर लिप्टन टी का ऐड करती है, आपने देखा होगा। अब सोचिए ये लिप्टन टी कितना पुराना है, 1922 से ये चला आ रहा है, और उस टाइम पे इसका ऐसा एडवर्टीजमेंट हुआ करता था जिसमें पीछे तो पूरा इंडियन फोर्ट का लुक दिया हुआ है उसको दर्शाने के लिए, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा जो रिच लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है ये ऐसे लोगों में जो कि रॉयल लोग होते हैं, उनकी रॉयल्टी है ये, तो ये दर्शाया जाता था। तो पीछे इंडिया का फोर्ट का पूरा व्यू बनाया गया और आगे घोड़े में विक्टोरिया जो है, क्वीन ऑफ विक्टोरिया, उनके तीसरे बेटे बैठे हुए हैं। तो ये इस टाइप का एड उस टाइम पर छपता था। नाउ कम टू द टॉपिक, विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. तो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम एक सेट ऑफ डेट्स चुनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी? तो जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो उन सारी चीज़ों के अराउंड होती है, उन सभी चीज़ों के अराउंड घूमती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ हो पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैटल हुआ हो, या मान लीजिए किसी रानी की बहुत सारी शादियां हुई हो, तो वो जो डेट होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारे वो इवेंट्स होते हैं, वो डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। अगर हम अपनी स्टडी को चेंज करके न्यू इश्यूज पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे लिए एक न्यू सेट ऑफ डेट्स अपीयर हो जाएंगी। तो इट्स ओनली डिपेंड अपॉन आर बिलीव कि हम कौन सी डेट को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और कौन सी डेट्स को नहीं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। दीज हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वॉरसराय लॉर्ड माउंट बेटन। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिप्टन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। It was a seemingly never-ending succession of governor generals and वॉयसराइज। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला है कि जैसे देखिए हिस्ट्रीज़ में जब हिस्ट्री लिखा गया, जो हमारे पुराने जो जब हम लोग ब्रिटिश रूल में थे उस टाइम की जो हिस्ट्री लिखी गई, तो वहाँ पर रूल था कि हर जो गवर्नर जनरल है उसका रूल इम्पॉर्टेंट होगा, एक गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो इस हिस्ट्री में हमने फर्स्ट रूल देखा कौन से गवर्नर जनरल का था, वॉरेन हेस्टिंग का था, और एंडेड जो था वो लास्ट वॉयसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे एंड हुआ था। तो हर हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके बारे में, जो बाकी के भी थे, हेस्टिंग्स थे, बेंटिक थे, डलहौजी थे, तो ये लोग जो थे जनरल्स और वायसराइज थे, इनके बारे में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो डेट्स हैं ये हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन पर्सनैलिटीज़ की वजह से। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जितने भी डेट्स हैं हिस्ट्री की, ये इन पर्सनैलिटीज़ के आजू बाजू घूमती हैं, उस टाइम पर जो एक्टिविटीज़ हुई, जो इनकी पॉलिसीज थी, जो अचीवमेंट्स थे, हर एक चीज़ मतलब इनके आजू बाजू घूमती है। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हमारी डेट्स की जो क्रोनोलॉजी है, हम जो डेट वाइज हर एक चीज़ को बताते हैं, तो वो हम इनके बारे में नहीं बताते। हर एक चैप्टर में, हर एक पार्ट में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इनका कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि ये जो सारे लोग हैं, ये जितनी भी डेट्स इनके आसपास, इनके अचीवमेंट्स, इनकी पॉलिसीज, इनकी एक्टिविटीज़ से लिंक्ड हैं, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम इनकी डेट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? तो क्या हम इस हिस्ट्री पीरियड को एक अलग तरीके से लिख सकते हैं? कैसे हम फोकस कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अलग अलग ग्रुप्स के लोगों में, अलग अलग क्लासेज में, जो कि इंडियन सोसाइटी के हैं? और अगर हम गवर्नर जनरल्स के हिस्ट्री फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो हम किस अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम जब भी हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उनको कुछ चैप्टर्स में या फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वो हमारे लिए कन्वीनियंट भी हो और एक जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि वो एक स्टोरी के फॉर्म में बताया जाए और वो एक सेंस क्रिएट करे, हर कुछ एकदम हॉचपॉच नहीं हो जाए, सब कुछ मिंगल अपना हो जाए, इसलिए हर एक चैप्टर को ऐसे अलग तरीके से नाम देकर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो हम इस प्रोसेस में इस चीज़ पर फोकस करते हैं, सिर्फ उन इवेंट्स पर फोकस करते हैं जिसके बारे में हम स्टोरी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया में थे उस टाइम पर, तो हम उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, ना कि इंडियंस की एक्टिविटी के बारे में। वॉट देन डू वी डू? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मैट फॉर आर हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। A new set of dates will become more important for us to know. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर डिपेंड करता है कि जो डेट्स थी वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने, जैसे कि आपने जनरल डायर का नाम सुना होगा, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जनरल थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग का जो मैसेकेयर हुआ था उस टाइम पर वहाँ के आए लोगों पर फायरिंग करवा दी थी। अब ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए वो डेट आज भी याद रखी जाती है। तो इसी सारे इवेंट्स की वजह से जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको याद रखा जाता है, और जो इवेंट होता है उसकी वजह से उस डेट को याद रखा जाता है किसी ना किसी नाम से। नाउ कम टू द टॉपिक। हाउ डू वी पीरियडाइज। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ बता रहे हैं कि 1817 में जो जेम्स मिल थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने अपनी एक बुक थी जो कि उन्होंने 3 volume यानी कि 3 parts में लिखी थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो पब्लिश करी, जिसको उन्होंने 3 parts में डिवाइड कर दिया था, 3 periods में, जिसमें फर्स्ट था हिंदू, सेकेंड था मुस्लिम एंड थर्ड था ब्रिटिश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। उन्होंने इस चीज़ पर डिवाइड किया कि किस तरीके से हिंदूज इन्फ्लुएंस हुए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, किस तरीके से मुस्लिम, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इस बेसिस पर उन्होंने इसको बांट दिया था। हालांकि ये जो पीरियडाइजेशन उन्होंने किया था, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए रही हो? चलिए देखते हैं। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. तो हम क्यों करते हैं कि हर एक पीरियड को डिवाइड कर देते हैं? वो इसलिए होता है ताकि हम उस चीज़ पर फोकस कर सकें, उस पीरियड पर फोकस कर सकें जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइम के हम फोकस कर सकें, उनके फीचर्स जान सकें। तो इसलिए हम पीरियडाइज टर्म यूज़ करते हैं, ताकि हम डिफरेंट पीरियड्स के बीच में एक डिमार्केटेड लाइन बना दें, सो दैट हम उस पीरियड के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस्ड रहें। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, Before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. तो जो मिल थे, जेम्स मिल थे, उन्होंने सोचा कि जो सारी एशियन सोसाइटी है वो काफ़ी कम लेवल पर डेवलप हो रही हैं, सिविलाइज हो रही हैं, अगर हम कंपेयर करें यूरोप से। यूरोप इज़ बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड। तो उनके हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को बताया ब्रिटिश इंडिया की अपने तरीके से अपनी बुक में, उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में पहले हिंदूज़ का रूल था, उसके बाद मुस्लिम्स का रूल आ गया, जिसमें आपने देखा अकबर, हुमायूं, ये सब लोग, तो इनका रूल आ गया, और इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, जो कास्ट सिस्टम था, जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, ये सारी वहां की सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। नाउ कम टू टॉप राइट कॉर्नर ऑन फिगर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, कौन बने थे और किस डेट पे बने थे, ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमें ये पिक्चर शो की जा रही है। व्हाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफीज ग्लोरिफाइड देम एज पर्सन एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स। तो जिस तरीके से हिस्ट्रीज की बुक ने इनके बारे में बताया, गवर्नर जनरल के बारे में बताया, उनकी बायोग्राफी जो थी, उन्होंने उनके काम को ग्लोरीफाई किया, और जो पेंटिंग्स थी उससे ये दर्शाया कि वो एक काफ़ी पावरफुल फिगर थे। नाउ कम टू दिस एक्टिविटी, इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। Now divide their life into different periods and list out the significant events in each period. Explain the basis of your periodization. तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, ज़रूरी नहीं मम्मी के साथ आप इंटरव्यू करो, किसी के साथ भी कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स में, एंड फिर आपको एक पीरियडाइजेशन करना है। कम टू नेक्स्ट पेज। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. जो जेम्स मिल थे, उनको ये लगा था कि अगर जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो अगर इंडिया में रहेगा तो इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री बन जाएगा, और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंडिया को सिविलाइज्ड करने के लिए, उन्होंने बोला कि हमें यूरोपियन मैनर्स के जो आर्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, लॉज हैं, वो हमें इंडिया में लाने पड़ेंगे। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिशर्स शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. मिल को ये लगता था, जेम्स मिल को, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सारी टेरिटरीज, पूरे भारत देश को, पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लेना चाहिए, कब्जे में कर लेना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ के लोगों को हैप्पीनेस मिले, इंडिया के लोगों को, और क्योंकि वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं ब्रिटिश रूल के हेल्प के बिना, ऐसा वो समझते थे. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे. और ये आइडिया जो हिस्ट्री का था उसकी वजह से ब्रिटिश रूल ने अपने पूरे फोर्सेस को, अपने पूरे जो सिविलाइजेशन है उसको प्रोग्रेस किया, उसको बढ़ाया इंडिया में. ब्रिटिश रूल के पहले जो एक डार्कनेस थी, क्या वो कंसेप्शन आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल अगर नहीं आता तो इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाती. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स. Why should we characterize an age only suggest that lives and practices of others? Why should we characterize an age only through the religion or the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. दे आर सिंपली ट्राइंग टू से कि हम एक जो पीरियड है उसको किसी के रिलीजन के बेसिस पर क्यों डिफ्रेंशिएट करें. फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मुस्लिम का जो वॉल्यूम बनाया था उन्होंने, तो ऐसा नहीं था, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे. मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये हिंदू रूलर्स के टाइम की बात है और दूसरी मुस्लिम रूलर्स के टाइम की बात है. बात रूलर्स के धर्म की नहीं है, बात उनके जो वे ऑफ लिविंग, जो प्रैक्टिस वो करते थे और जिस तरीके से वो लोग अपना फेथ जिस चीज़ पर रखते थे उस चीज़ की है. क्योंकि अगर आप ऐसे मानो तो अकबर तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम धर्म के भले थे, लेकिन उन्होंने हर एक धर्म को प्रॉपर दर्जा दिया था, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी थी जैसे अपने धर्म को देते हैं. तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है ये मानना कि किसी धर्म पर बेस्ड अगर हिस्ट्री को माना जाए. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू एशियंट, medieval and modern. This division too has its problems. It is a periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. फिर जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था उसके अलावा हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को तीन चीज़ों में बांटा है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. लेकिन इस डिविजन के भी अपने खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये मॉडर्न पीरियड से एसोसिएटेड है और जो ग्रोथ है इसकी वो ऑल फॉर्म्स ऑफ जो मॉडर्निटी है, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब से रिलेटेड है. मेडिवियल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. तो मेडिवियल उस चीज़ को टर्म डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया था उस सोसाइटी के बारे में जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and progress. Many historians therefore refer to this as colonial. तो आप इस बुक में देखोगे कि जो ये मॉडर्न सोसाइटी के बारे में जो बताया जा रहा है जहाँ पर इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी ये सब कुछ होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल, लोगों को नहीं मिल रहा था. तो इस पीरियड को लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोसेस के हिसाब से और जो चीज़ें लोग को नहीं मिल रही थी इन सब चीज़ों के हिसाब से, इन हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला है रादर देन मॉडर्न और मेडिवियल पीरियड. चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी. इसके नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विथ व्हाट इज कॉलोनियल. सो टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.